نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم رمضان کے قریب ہیں اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی پورا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو تھے وہ عموماً 5 ماہ پہلے سے ہی دعا مانگنی شروع کر دیتے تھے کہ اللہ یہ جو رمضان آئے گا ہمیں اس میں خوب نیکیاں کرنے والا بنانا. اور جب رمضان گزر جاتا 1 ماہ نکلتا تو باقی 6 مہینے یہ دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہم نے اس میں جو نیکیاں کی ہیں وہ قبول فرما. الایمان بین الخوف والرجا, ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ہے. اب رمضان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے ہم سبھی جانتے ہیں. 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اس ٹیبل کی 4 ٹانگیں ہیں, ایک بھی اتر جائے یا ہٹا دی جائے تو یہ ٹیبل سیدھا نہیں رہے گا. تو آپ اسلام کو اس وقت ایک ٹیبل کے ساتھ تشبیہ دے لیجئے کہ جس کو 5 ٹانگوں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اگر اس میں سے ایک ٹانگ ہٹا دی جائے تو وہ اسلام جو ہے وہ گرے گا نہیں, بنا اگر وہ ٹیبل تو امبیلنس ضرور ہوگا, لڑکھڑائے گا. تو رمضان ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس پہ بنیاد بھی ہے, اس کا انکار کفر پہ لے جاتے ہیں انسان کو, اور کوئی زبان سے کہہ کر اقرار کرے اور اس پہ فورس کرے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ روزے اسلام میں فرض ہے تو اس کے اسلام سے نکلنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہم سب جب بھی رمضان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے اور وہ کیا ہے, کھانا پینا چھوڑ دو. ایسے ہی ہے نا, دیکھ لیجئے لمبے روزے ہیں, اتنے گھنٹے کیسے رہیں گے, کھا نہیں سکتی میں, پی نہیں سکتی, مجھے شوگر ہے, بچے اسکول جاتے ہیں, نرسنگ مدر ہوں. عموماً دیکھیے کہ لفظ روزے کے ساتھ یا رمضان کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں جو لفظ آتا ہے نا وہ کھانا پینا آتا ہے, یعنی نہ کھانا پینا. حالانکہ آپ شاید اس چیز کو سمجھ پائیں جو جملہ میں بولنے لگی ہوں کہ رمضان میں کھانا اور پینا چھوڑنا سب سے چھوٹی ڈیمانڈ ہے. یعنی یہ مقصد نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا تو بس آپ کا روزہ ہو گیا, نہیں. یہ تو بالکل ایک منیمم سی ریکوائرمنٹس ہے. اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو 11 مہینے تک ایک ایسے روزے سے گزارتے ہیں کہ جس میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بھی انسان اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کو چھوڑتا ہے, ہر اس چیز سے دور رہتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کمزور کر دے, ہر وہ لقمہ پیٹ میں اتارنے سے ہٹتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دور کر لے, جس سے اس کی دعائیں قبول ہونے سے رک جائیں. تو کھانا چھڑوانا مقصد نہیں ہے, روزے کا مقصد کھانا چھڑوانا نہیں ہے, بٹ کھانا چھوڑنے سے وہ مقصد حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے. آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رات کو بہت گہری نیند نہ آئے, اتنی نیند نہ آئے کہ آپ کی فجر بھی چلی جائے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ رات کا کھانا ہلکا کر دیں, کیونکہ جب ہم بہت بھاری کھانا کھا لیتے ہیں اور بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور بالکل کھانے سونے کے قریب پہ کھاتے ہیں تو وہ کھانا پھر بالآخر نیند لانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اب اس وقت مقصد کیا ہے, ہلکا کھانا نہیں, مقصد یہ ہے کہ آپ کی اتنی گہری نیند نہ ہو کہ آپ کی نماز چلی جائے. یہاں بھی یہ مقصد ہے, ہم سال کے 11 مہینے تک اتنے بزی ہو جاتے ہیں اپنے کھانے پینے کی روٹین میں, بہت نہیں کھاتے ہم بس بار بار کھاتے ہیں, ہم 1 ڈش نہیں کرتے, ہمارے دن میں کم از کم 6-7 ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. چلیے ابھی دیکھیے اس وقت تقریباً 6:56 ہوئے ہیں نا شام کے, فجر آج کل 6 بجے کے قریب ہی ختم ہوتی ہے نا, اس کے بعد ہی کچھ کھایا ہوگا آپ بھی اور میں بھی. ذرا سا اپنے ذہن پہ زور دیتے ہیں, ہم نے صبح سے کیا کھایا, कोई हो सकता है सुबह उठते चाय पीते होंगे, किसी ने स्मूदी पी होगी, किसी ने लीमू पानी लिया होगा, किसी ने शहद लिया होगा। फिर मोस्टली घरों में डबल रोटी, अंडा, ब्रेड टोस्ट, पराठा, रोटी। हर एक सोचे ज़रा अब तक कितने डिफरेंट टेस्ट मेरी ज़ुबान पे आए। ज़ुबान एक है, टेस्ट डिफरेंट है उस पर। अब जब इतने डिफरेंट टेस्ट आपकी ज़ुबान पे आए तो सारा दिन आपकी ज़ुबान बेचारी पहचानती रह गई ना। ऐसे ही ना, जैसे आप किसी जगह से होकर आए और बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों से मिले तो आप थक चुके होते हैं, एक को देख दूसरे को देख घर जाते हैं तो आपके जहन में एक अजीब सी हलचल होती है कि मैं बहुत सारे लोगों को मिली हूँ। अब हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बच्चों के साथ। आप देखिए कि आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुस्लिम घरानों का लाइफ स्टाइल मुस्लिम नहीं रहा किसी हद तक। हफ्ते के 5 दिन स्कूल की मजबूरी कह लीजिए, मर्दों के सुबह उठ के काम पे जाने की बात कर लीजिए, तो कम से कम सोने और जागने में तो काफ़ी बेहतरी है। 7 बजे के बाद शाम को माएँ ये शोर करती हैं कि अब सो जाए, छोटे बच्चों को और जल्दी सुलाया जाता है क्योंकि इन्होंने सुबह उठना है। ऐसे ही है ना, यानी सोना और जागना एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी में। अब होता क्या है कि हम जब सोते देर से हैं तो उठेंगे भी देर से। दूसरी चीज़ जो आज हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड है वो हमारा फूड साइकिल है। ऐसे ही अमूमन देखिए कि हमारे घरों में एक माहौल है नाश्ता हल्का, ऐसे ही है ना, लाइट। कई लोग तो सुबह उठ के मुंह ही नहीं सीधा करते बेचारे, कहते हैं भूख ही नहीं, आई डोंट नीड टू ईट। वजह क्या, रात देर को खाया और खूब खाया और सो गए। एक जुमला खामोशी से नोट कर लें, जो बंदा आपसे ये कि मुझे सुबह उठ के भूख नहीं लगती, उसका लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है। एक बात, देर से खाया, ज़्यादा खाया, हैवी खाया। और दूसरी वजह बड़ी अहम है, आज आप नोट कीजिएगा जाके, कल कर लीजिएगा सुबह में, कि आप सुबह फजर पे नहीं उठे। हमारी बॉडी मुस्लिम है, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर इस तरह के अलार्म और क्लॉक फिट किए हुए हैं कि ये बाहर की घड़ियाँ तो अभी चंद सालों की बात है ना, पहले तो नहीं थी। आज भी कई ऐसे दुनिया के इलाके होंगे कि घड़ी होती नहीं है, आपका सेलफोन बंद हो जाए तो आपकी भी घड़ी फौत हो गई। ऐसे आज घड़ियाँ हैं ही नहीं, सिर्फ फ़ोन के अंदर से देखते हैं, और जब फ़ोन बंद होता है आपको रियली नमाज का वक्त नहीं पता चलता हुआ है कि नहीं हुआ। अब क्या होता है कि इंसान का जिस्म खुद उसको बताता है कि मुझे भूख लगी है। आज अगर आप रात को, जैसे भी 7 बजे हैं, ठीक है, आप यहाँ से इंशाल्लाह 8 बजे तक फारिग होती हैं, घर जाकर 9 बजे तक खाना खा लें और मुनासिब सा खा लें, और आप फिर उसके बाद थोड़ा नमाज वगैरह पढ़े ईशा की, सो जाए। फजर के लिए आप सुबह 5 बजे भी उठ जाए, यहाँ का मुझे पता नहीं है, मोस्ट लाइकली 5 बजे के अराउंड ही होता है आजकल टाइम, मतलब मोस्टली लोग उस पर पढ़ते हैं। वजू करेंगे, फिर फजर पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आप अभी जाए नमाज पे बैठे दुआएं पढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक खिंच पड़ेगी, जिसको खिंच पड़ना कहते हैं, आपको पता है ना, भूख की वजह से। जो लोग फजर के बाद नहीं सोते हैं, उस वक्त पेट खाने को मांगता है, और फजर के बाद ना सोने की आदत डालने में ये इतना कारामद नुस्खा है कि आप फौरन उठ के किचन में चली जाए। कितने लोगों को ये इशू है कि फजर के बाद बहुत नींद आती है, सोने को दिल करता है, माशाल्लाह बिग प्रॉब्लम है, और आज से 200 साल पहले भी था। अल्लामा इकबाल के बारे में मैं पढ़ रही थी उनका, कि वो सुबह को जागने के बड़े शौकीन थे, और जब सुबह को उठते थे और देखते थे कि बाकी लोग सोए हुए ना, तो वो बहुत गम खाया करते थे। और वो फिर एक उनका शेर भी है ना, कि किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हमसे कहाँ प्यार है, नींद तुमको प्यारी है। अब होता क्या है कि जब आप फजर चले पढ़ी ली, झट से सो जाते हैं तो भूख लगी होती है, लेकिन वो सोने की वजह से दब जाती है। अब आप अपनी रूटीन के मुताबिक 9 बजे 10 बजे उठते हैं, वाकई भूख सो चुकी होती है। ये तो एक फितरी सी बात है, जो ख्वाहिश जो डिज़ायर हम पूरी ना करें ना, थोड़ी देर बाद वो अल्लाह के हुक्म से खुद ही ख़त्म हो जाती है। अब जब हमें भूख नहीं लगती और फिर हम 12-12 बजे तक भूखे रहते हैं, यहाँ की बात नहीं मैं कर रही, बिल्कुल वो लोग जो वो सिस्टर जो घरों में ही रहती हैं, अक्सर कहती हैं कि हम 12 बजे तक कुछ नहीं खाते। हालांकि आज आप साइंस को देखिए, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर से किसी से पूछे, और तीसरी बात है कि दुनिया में एक प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारने वाले नॉन मुस्लिम्स लोगों को देखिए, हमारी सोच से बिल्कुल ऑपोजिट। रात का खाना लाइट, और हमारा सच बताइए सबसे हैवी खाना कौन सा होता है? डिनर। और माशाल्लाह अगर बफे में चले गए तो कोई छोड़ के ही आया, इतनी नकाहत थी, 2 टाइम पहले से खाए ही नहीं कि वहाँ जाके खाएंगे, और फिर कोई उठाकर ही लाया। किसी ने एक दफ़ा ऐसे पूछा था, क्योंकि ये बफे लफ्ज़ भी कई लोग इसको बुफे कहते हैं, कोई बफेट कैटी बोलता है, कोई नहीं बोलता, तो किसी ने किसी से पूछ लिया ये बफे क्या होता है, क्योंकि ये कोई हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं ना। तो दूसरे ने कहा इसका मतलब ये है कि इतने भूखे हो कि कोई तुम्हें छोड़ा है, और इतना खा लो कि फिर तुम्हें कोई उठा कर लाए, ये बुफे होता है। हमारे मुल्कों में तो ऐसे ही होता है, ऑल यू कैन ईट। अब इसका ये नहीं मतलब कि सारा कुछ खा दो। अब ये तक बात है, हमारी सोच के नाश्ता सबसे हल्का और डिनर सबसे हैवी। हालांकि आप आज भी अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड साथियों को ज़रा सा टटोल कर देखिए, सबसे ज़्यादा लाइट खाना उनका रात का होता है, और सुबह ब्रेकफास्ट सही ठीक ठाक करते हैं। वो एक पूरा सीरियल का बोल खाएंगे, फ्रूट का कप खाएंगे, फिर एक सैंडविच भी लेंगे, वजह क्या कि पेट खाली था। आप कहते हैं हम तो सोए रहे, काम ही कुछ नहीं किया। नहीं, हमारे अंदर पूरी मशीनें चल रही हैं, मैदा भी करता है, सब करता है। हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट दुरुस्त कराने का बेस्ट तरीका रमज़ान है, माजरत के साथ माँ से। आज हम अपने बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाना पसंद करते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्नैक्स। मैं लफ्ज़ बोल देती हूँ, माइंड ना कीजिएगा, स्नैक्स असल में स्नैक्स हैं। कई बोलने में भी पता ही नहीं होगा ये फ़र्क क्या होता है। स्नैकिंग क्या है? हर वक्त खाते रहना। अब चिप्स खोल दिए, अब बिस्किट दे दिया, अब जूस का डब्बा खोल दिया, अब ज़ाहिर वॉशरूम में जाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे तो उनका दिल चाह रहा होगा कि अब मामा जो है मुझे बर्गर बना दें। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। जितनी दफ़ा खाएंगे, याद रखिए आपके जिस्म की एक एक मशीन हरकत में आ जाएगी। और जब हम अपने बच्चों को इस चीज़ का इतना यूज़ टू करते हैं, तो फिर याद रखिए कि उनका तो सारा वक्त ही अपने बारे में सोचने में गुजर जाता है, अब क्या खाऊं। मैं एक जगह कहीं थी तो 2 3 4 बच्चे थे डिफरेंट एज ग्रुप के, मैं ऐसी बैठी वहाँ थी तो मैं देख रही थी। बिलीव मी, मोर देन 1 आवर, शायद इससे भी ज़्यादा, मुस्तकिल बच्चे डाइनिंग टेबल के साथ बैठे हुए थे और फरमाइशें कर करके, अब जेली कस्टर्ड खाना है, माँ ने उनको जेली और कस्टर्ड निकाल दिया, वो खा लिया। अच्छा, अभी वो खा रहे हैं तो चिप्स चाहिए, चिप्स भी खा। यानी बिलीव मी कि बच्चे थोड़ी खाते हैं, मुझे पता है ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन वो मुस्तकिल टेस्ट चेंज कर करके फरमाइशी प्रोग्राम दे रहे थे। इट्स नॉट हेल्दी। अपने बच्चों को शुरू से ही ईटिंग हैबिट्स ऐसी रखवाएं कि हमारे असलाफ यानी सहाबियात अपने बच्चों को रमज़ान में फजर पे दूध पिलाती थी, और जितना वक्त वो बग़ैर दूध पिए गुजार सकता था, गुजार के आखिर में तब देती थी जब उनको ख़ुद पता चलता था कि अब इसकी ज़रूरत है। क्यों? कहती थी हम इस बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि रमज़ान है, अब बच्चे का रोज़ा नहीं है, और ऑफ़ कोर्स बच्चे को फजर पे पिला के मगरिब पे भी नहीं पिलाएंगे, बट ये माओ के अंदर से ये चीज़ बच्चों में आ जाती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शख्स को देखा, शराब पी हुई थी उसने, तो आपने उसको दुर्रे लगवाए, कोड़े लगवाए, और साथ ही कहा कि तू रोज़ रमज़ान में शराब पीता है, हमारा तो बच्चा बच्चा रोज़े से है। तुम बच्चों के बारे में एक चीज़ नोट कीजिए, अब इसमें डिफरेंट एज के बच्चे हैं, 6 7 8 साल, स्पेशली मैं आज की जो आपके साथ टॉक करना चाह रही हूँ, जो मेरे माइंड में आपको एक नुक्ता देने का है, ग्रोइंग चाइल्ड 8 9 10 11 12, इनके बिटवीन की जो एजिस के बच्चे हैं, जो आपकी नज़र में बच्चे हैं लेकिन अब वो बड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है? जी नमाज तो हमें पता है, लड़कियों की भी बेटी की भी अलामत पता है, लड़कों की भी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, चेंज आ गया, या 10 साल नमाज के ऊपर तो कोई इशू ही नहीं है। लोग पूछते हैं रोज़ा कब फ़र्ज़ होता है, तो मैं उसका एक अपने पास से जवाब दे देती हूँ, जब वो रखने के काबिल हो जाए, जब सह लेंगे तो रह लेंगे। अमूमन माएँ ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे रोज़े नहीं रख सकते, और बच्चे का दिल छोटा किया जाता है ये कह कह कर नहीं अभी नहीं रख सकते। और अक्सर इस उम्र में शौक बहुत होता है, क्योंकि एक तो वो सहरी में उठ के पराठे खाने का कि हमें सुलाकर मामा पापा क्या खा रहे हैं, और वो आवाज़ सुनकर उठ जाते थे। आप अपना ज़रा सा याद करें, मुझे आज की भी ये सहरियाँ कोई नहीं याद, मुझे बचपन की सहरियाँ याद है। क्या वो एक ग्लैमर होता था उस वक़्त उठने का, और वो एक दही की प्याली, पराठा, रात की बचा हुआ सालन, उसकी लज्जत और उसका मज़ा अभी भी महसूस होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे रोज़ा नहीं रख सकते, बच्चों में स्टेमिना हमसे ज़्यादा होता है। याद रखिए, जितना आपके बच्चे, ये छोटे 4-5 साल के बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं, आप मैंने कभी इतनी वॉक की इतना भागे नहीं, जितना वो चीख चिल्ला लेते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उछलते हैं कूदते हैं, उतना हम और आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, बच्चों में एनर्जी ज़्यादा आती है। तो कभी अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें, रखवाएं शुरू से, यानी ये एक जुमला लिख लें, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये बच्चियाँ मुझे उम्मीद है 8-7 साल की होंगी, बेटा आप कितने साल के हो,
जी 6 साल
छः की हैं ये सारी, छः की हैं
आठ
ये 10 की है,
जी
माशाल्लाह।
मैं
और मेरा ले आप सबसे ज़्यादा गौर से ये तीनों सुन रही हैं,
बहुत अच्छी बच्ची
मेरा
है
भी दिल कर रहा है बेटा मैं आप जितनी हो जाऊँ, मुझे तो इतना आप अच्छी लग रही हैं। अब आप देखिए करें क्या, आप अपने बच्चों को रोज़ा रखवाएं लेकिन बीच में खुलवा दें। जैसे हमारे दौर में क्या कहते थे कि बच्चों के चिड़ी रोज़ा और दो रोज़े होते हैं जी, आज कितने रोज़े रखे, तीन रखे, दो रखे, कहाँ रखा है रोज़ा, मुंह में रखा है, कोई कहता है रात में रखा है, ऐसे ही ना। आप सहरी में सबको उठाएं, इस एज के बच्चे, इससे भी छोटों को सबको उठाएं, उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो देखेंगे कि हमारे माँ बाप उठते हैं और ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। आप अफसोस के साथ कहें, इवन अब बच्चे जो रोज़ा रखते भी हैं वो सहरी नहीं करते, माएँ क्या कहती हैं, एक के सिरहाने मिल्क शेक का जग लेके खड़ी होती हूँ कि चलो कुछ तो पी ले, और वो आँखें भी नहीं खोलते पूरी, बंद आँखों में फटाक कटकट पी और सो गए, भाई फजर किधर गई, वो फिर अब सुबह उठेगा, स्कूल जाने से पहले पढ़ेगा, गलत तरीके। देखिए वो कहते ना कि मिन्नतें कर कर के तेरी तुझको बिगाड़ दिया, बच्चा दुनिया में जब आता है अल्लाह उसको दूध के पीने का तरीका सिखा के भेजते हैं ना। आप और मैं अपने बच्चे को अगर सिर्फ 40 डेज़ के अंदर, ये भी चीज़ मैंने पढ़ी, 40 डेज़ के अंदर अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को कम अज़ कम जितनी माँ की रात की नींद है ना जो पूरी होनी चाहिए, 6 घंटे तो है ना, तो बच्चा एक दफ़ा भी नहीं उठेगा। एक इस खूबसूरत तरीके से माएँ सेट करती हैं, पर कई माएँ बेचारी अब देखे सारी रात ही उठ उठ के दूध पिला रही हैं जी, ये रो रहा था दूध पिला दिया, इसको नींद नहीं आ रही थी दूध पिला दिया, अब उसको पेट में दर्द है दूध पिला दिया। तो देखिए जिसको एक चूँ करने से दूध मिल गया वो क्यों ना चूँ करे सारी रात, नहीं आहिस्ता आहिस्ता, मैं मानती हूँ अभी छोटी सी उसकी टैंकी है, फिलअप होती है वो फिर चंद घंटों में, लेकिन डॉक्टर्स आपको जो भी कहते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों का टॉलरेंस लेवल बढ़ाएं और 6 घंटे कम अज़ कम बच्चे को दूध से दूर रखें, रात को सोने से पहले बच्चे को ठीक पिला दीजिए, सारी रात वो भी सोएगा आप भी आराम से रहेंगी, जब आप सहरी के लिए या तहज्जुद के लिए उठेंगी पहले बच्चे को पिला लें फिर आप उठ जाएं। इसी तरह आपने इन मासूम बच्चों के भी टाइमिंग लगाएं। मैं एक ऐसी माँ को जानती हूँ, किचन में इस तरह से ना उसने एक छोटा सा फ्रिज के ऊपर जैसे एक लिस्ट लगाई होती है किस वक्त किस बच्चे को क्या देना है, और बच्चों को बिठा कर ये भी आप कर सकते हैं, अपने बच्चों के मील सेट करें। नॉर्वे में अक्सर कहते हैं कि एक दिन के 5 मील हैं, बच्चों को स्कूलों में भी ऐसे ही मील्स देते हैं, 5 मील्स, मुराद ये कि कभी कुछ दे दिया तो कभी कुछ दे दिया। अच्छा वो टाइम लिख देती थी, मैंने खुद देखा, तो बच्चों को अगर भूख भी लगी होती थी ना तो वो घड़ी को देख रहे होते थे, नहीं अभी 10 मिनट है हमारा खाना खाने में, और जब खाना का टाइम था माँ फिर इतने ऑर्गेनाइज तरीके से उस वक्त पूरा खाना रेडी करके टेबल पर रख चुकी होती थी। ऐसे बच्चे डिसिप्लिन होंगे। ये जो हमारा हर वक्त का एक ही काम है किचन किचन, उसकी वजह यह कि 4 बच्चे और एक मियाँ और घर में एक बुज़ुर्ग है ना, एक खातून ने खाना सारा वक्त एक एक को डील कर रही है, गलत तरीका। सब एक साथ खाएंगे, एक ही चीज़ खाएंगे तो सबका दुख दर्द भी सेम होगा। देखिए ना अक्सर आपने नहीं सुना खाना रखा है तो बच्चे को पूछा मुझे भी भूख नहीं, भाई उसको कैसे भूख लगे, वो 2 घंटे पहले माँ से 2 पराठे बनवा के ऑमलेट के साथ खा चुका है। अब बड़े लोगों ने तो हो सकता है सुबह के नाश्ते ही किया हो, सिर्फ चाय रस लिया हो। जब एक साथ खाएंगे ना तो सबको एक दूसरे का दर्द समझ आएगा। मैं अपने ऊपर लेकर सोचती हूँ कि अगर मुझे भूख लगी है ना, फिर मेरे घर वालों को भी लगी होगी, क्योंकि हम दोनों ने साथ खाया था। बात समझ रहे? तो बच्चों की ईटिंग हैबिट दुरुस्त करें। फिर इसमें आप देखिए कि ये कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद ही तो नाश्ते का टाइम है, मत रखाएं रोज़ा, लेकिन सहरी इनको साथ करवाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि इन बच्चों को एहसास होगा। फिर दूसरी टिप और ले लीजिए कि अब मगरिब आजकल यहाँ 8:45 पे हो गई, 8:45 पे ना, इस एज के बच्चे अगर मगरिब तक जागते ही हैं ना, तो फिर उस इफ्तारी से तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे पहले उनको कुछ ना दें। मैंने क्या बोला, गौर से समझिए, उधर से रोज़ा रखने का भी उनको टेस्ट दें, खा ले स्कूल चले जाए, फिर स्कूल से आए 1-2 बजे खिला पिला दीजिए, आपको लग रहा है और भी ज़रूरत है, 4 बजे उनको चाय के साथ रस दे दें, फिर 4 से 8 तक कुछ ना दें। क्यों? जो खुशी आपको इफ्तारी करके मिलेगी उनको भी मिलेगी। बात समझ गए? बच्चे को सहरी भी कराएं, इफ्तारी भी कराएं, हाँ इन बिटवीन उनकी बेचारों की ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा उनको इसके साथ रख दें। अब आप अपने बच्चों को किस तरह इन्वॉल्व करें? कुछ बच्चे करते हैं कि हमें रोज़ा नहीं रखना। वैसे मैंने ये चीज़ बहुत कम बच्चों में देखी है, आप मेरी इसलाह करें, क्योंकि मेरा कोई इस तरह का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं। नमाज मुश्किल लगती है बच्चों को, रोज़ा नहीं लगता, ऐसा है? अक्सर माएँ ये तो कहती हैं कि हमारे बच्चे, बल्कि बच्चियों को कहते हैं कि जी इनको बताएं ये नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन मेरे पास बहुत कम माएँ आई हैं, या शायद माएँ भी नहीं चाहती कि बच्चे अब इतनी उम्र में रोज़े रखें, बहुत कम माएँ कहती हैं कि ये रोज़ा नहीं रखता। ये क्या मेरी बात सही है? बच्चे शौक से रखते हैं। अब आप करें क्या? पहली बात आपको कुछ टिप्स देती हूँ, इस पर हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत कार्ड भी बना हुआ है, प्रिंट करवाया हुआ है नूरुल कुरान के थ्रू, इस साल भी शायद अगर आप भी चाहें तो आपको भी मिल जाएंगे, कि हम अपने बच्चों को कैसे रमज़ान एक फ़न टाइम भी बनाएं, स्पिरिचुअल भी हो, और वो उसका इंतज़ार करें। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप एक फैमिली के तौर पर रोज़े रखें। जैसे आप देखिए हमारा कल्चर अब क्या हो चुका है, सेलिब्रेशन किसकी रह गई, चले सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, साल में एक ही है ना, पर घर में 6 लोग हैं तो 6 हो गई, शादी कल्चर है, हम शादी की मिसाल लेते हैं। अमूमन हमारे घरों में शादी की बातें, शादी के प्लान, शादी की तैयारियां कितने महीने पहले शुरू हो जाती हैं? 6 माह तो एक नॉर्मल है ना। मेरा सवाल है आपसे, रमज़ान की बातें कब शुरू करते हैं? 1 माह पहले, और उसमें खौफ और शौक के मोहब्बत के कैसे आज से करें? आज माशाल्लाह आप देखिए कि 22nd है ना इस वक्त, अल्लाह ने चाहा तो अगली 22nd पे रोज़ा होगा, 17 को हो गया, 18 को हो गया, 16 को हो गया, अल्लाह को पता है, लेकिन लेस देन 1 मंथ। हम लोग हर साल वेबसाइट पे एक बैक काउंटर चलाते हैं, मेरा ख्याल इस साल भी पेज पे डलेगा, उसको देख के बहुत दिल को कुछ होता है, हाँ इतने दिन रह गए, उल्टी गिनती पढ़ना जिसको कहते हैं। आज से जाकर अपने बच्चों के साथ बैठकर दिन गिनें, और रोज़ सुबह हर बच्चे को डिफरेंट टास्क दें, आज बड़े को दिया, छोटे को, छोटे को, छोटे को, तुमने जाके चेंज करना है। घर में वाइट बोर्ड्स भी होते हैं, एक्टिविटी बोर्ड्स भी हैं, कुछ भी है, कितने रह गए हैं, सुबह उठ के आज तुमने सुबह सुबह लिखना है, वो कहेगा रमज़ान में 26 डेज रह गए, कल तुमने लिखना है, सुबह उठ के वो दूसरा लिखेगा 26 नहीं 25 रह गए, घर में जितने लोग हैं ना वो लिखे, जब आखिरी लिख दे तो पहले की फिर बारी है। इसको बच्चों के साथ शेयर करें, उनको शौक भी दिलाएं, उनको जहनी तौर पे तैयार भी करें, लेकिन एक बात याद रखें कि उनको डराएं नहीं, खौफ ज़दा नहीं करें। मैंने कम खाने से मरता कम ही देखा है, अमूमन फूड पॉइजन किनको होता है? ज़्यादा को होता है। और मेरे जहन से एक तस्वीर जाती नहीं है जो मैंने आज से शायद 10 साल पहले देखी होगी, रियल देखा था लेकिन अब जहन पे तस्वीर है, जिसके बाद मैं जब भी कभी माँ की मोहब्बत देखती हूँ ना तो मुझे वो शक्ल याद आ जाती है। अमेरिका में बिल्कुल रिवाज है जो मैं अभी भी मिस करती हूँ, मगरिब की नमाज़ पे फैमिलीज पूरी की पूरी मस्जिदों में होती हैं, आपने भी कुछ बना लिया, आपने बना लिया कुछ, आप थी, हर एक अपना हांडी पतीला लेके पहुंच जाता है। खुली बाहर जगह होती है मोस्टली, वहाँ बाहर ही ये लकड़ी के टेबल और डेस्क वगैरह होते हैं, तो सब लोग फिर अपना लाते हैं, तो जिसका जो आता है ना फिर मिल के मस्जिद वाले प्लेट्स बना देते हैं। कुछ मस्जिदों से इख्तमाम होता है लेकिन मोस्टली इस तरह भी होता है, तो वो प्लेटों में कहीं समोसा है तो कहीं फ्रूट कटा हुआ है, तो साथ दूध में वो रूहअफ़ज़ा डला हुआ शरबत है। तो एक माँ थी, अरब लग रही थी, तो उसका कुपला मुपला बच्चा था कि ये नहीं 8-9 साल का होगा, तो यकीन करे बिलीव मी जब रोज़ा खुला ना तो उसने अपने दोनों हाथों में, एक में समोसा था दूसरे में मुझे याद नहीं वो जलेबी थी या पकौड़ा था, यकीन करे दोनों हाथों से उसके मुंह में ठोंसा हुआ था। यानी आप इमेजिनेशन में लाएं, और वो इतना गुपला था कि मैं हंस रही थी कि इसकी सेहत का यही राज है। लेकिन माँ का बस नहीं चल रहा था कि अपने बच्चे को कैसे घोल के पिला दे और खिला दे, माँ का दिल ही ऐसा होता है, खाए बच्चा लेकिन दिल में ऐसे लगता है कि माँ ने खा लिया। तो अपने बच्चों को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि रोज़ा आपकी सेहत के लिए बेहतर है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।